नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उत्तंग मुनि की बात चल रही थी, भगवान हस्तिनापुर से पधारे, उत्तंग ऋषि बीच में एक आफत खड़ी कर दी। बड़े भगवान पर गरम हो गए, क्यों नहीं संधि कराई? भगवान ने कहा इतने गरम होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्मी चलेगी भी नहीं, और हमने हमारी पूरी कोशिश की, उस कोशिश में वो ठीक नहीं बैठा। मेरे से तुम अध्यात्म बात सुनो तो फिर भगवान ने अध्यात्म की बातें सुनाई तो वो प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कोई वरदान मांगो, तो कहा महाराज हम मारवाड़ में रहते हैं, पानी की बड़ी कमी है। कहा ठीक है, तुम मुझे याद कर लेना, पानी आ जाएगा। एक दिन बहुत प्यास लगी तो एक चंडाल आया, काड़ा खलूटा भद्दा, उसको देख करके ऋषि ने कहा ये पसंद नहीं है, चंडाल को भी डांट लगा दी। इतने में भगवान प्रकट हो गए, अरे दिखने में चंडाल था ये तो इंद्र था, तुमको कोई पेशाब थोड़ी पिला रहा था, वो तो अमृत पिलाता। तो कहा महाराज इंद्र है तो सही तरीके से आना चाहिए, क्या हो गया सो हो गया। अब तुम जब कभी भी उत्तंक मेघ का नाम लोगे तो यहां बरसात हो जाएगी, ये तो कृष्ण की और उत्तंक की बात हुई। जन्मेजय ने कहा कि महाराज मामना उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जो भगवान विष्णु को भी श्राप देने के लिए तैयार हो गए, कृष्ण को कहा हम श्राप देंगे। वैशंपायन जी ने कहा कि महाराज अब मेरी बात सुनो, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। वे जब गुरु के यहां रहते थे उस समय उनको देखकर सारे ऋषि कुमारों के मन में ये अभिलाषा रहती कि उत्तंक के समान हमारे भी गुरु भक्ति होनी चाहिए। उनके गुरु का नाम था महर्षि गौतम, बहुत शिष्य थे उनके, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर था। उत्तंक इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ का कार्य, उत्तम सेवा परायण, इनके ऐसे स्वभाव को देखकर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए, गुरुकुल में निवास कर अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने घर चले गए, किंतु उत्तंक पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें घर जाने की आज्ञा ही नहीं दी। धीरे धीरे महामुनि उत्तंक को बुढ़ापा ने घेर लिया, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता भी नहीं चला। एक दिन की बात है, वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले जाए उत्तंक ऋषि। भारी बोझ होने के कारण थक गए, जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी के तार के भांति सफेद सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई। अतः उन लकड़ियों के साथ वो भी जमीन पर गिरी। इधर उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिसे हुए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। ऐसी अवस्था में उस सफेद जटा को देखकर अपना बुढ़ापा का निश्चय करके फूट फूट कर रोने लग गए। कौन? उत्तंक ऋषि। इतने में ही उनके गुरु महर्षि गौतम जी ने रोने की आवाज सुनी, पूछा, बेटा क्या बात हुई? आज तुम्हारा मन शोकाकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं, निसंकोच बताओ। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव मेरा मन आप में ही लगा रहा, आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में रहा, आप में ही श्रद्धा रखी, आप ही की भक्ति की, इसलिए अब तक मुझे पता ही नहीं चला कि अब मैं बुढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया, मुझे यहां रहते हुए 100 बरस हो गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य आए और गए, केवल मुझे ही आपने अपने पास रखा, क्या कारण है? गौतम ने कहा कि हे भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु सेवा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया, इसलिए इतना समय बीत गया, लेकिन मेरे भी ध्यान में नहीं आया कि तुम्हारे यहां रहते हुए 100 बरस हो गए, तुमने भी कभी मुझसे आज्ञा नहीं मांगी, मैंने भी जान करके आज्ञा नहीं दी। अब यदि तुम जाना चाहते हो तो सहर्ष आज्ञा देता हूं, चले जाओ, अपने घर को जाओ, विलंब मत करो। उत्तंक ने कहा, महाराज मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, कृपा करके मुझे बताओ, उसे आपकी सेवा में अर्पण करने के बाद ही आज्ञा लेकर घर जाऊं। गुरु ने कहा, बेटा सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं, तनिक भी संदेह नहीं है। तदनंतर उत्तंक ने युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से अपनी गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माता जी मुझे आप आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में क्या दूं, मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। इस श्लोक में जो अत्यंत दुर्लभ अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा उसे भी मैं तपस्या से ला सकता हूं, संदेह नहीं है। उनकी पत्नी अहिल्या बोली, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। सुनकर के उत्तंक ने फिर कहा, माता जी मुझे आपका कोई न कोई प्रिय कार्य तो करना ही है, इसलिए आपको आज्ञा तो देनी पड़ेगी, मेरे संतोष के लिए आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या आपका प्रिय करूं। अहिल्या बोली, अच्छा तो बेटा एक काम करो, राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए दो दिव्य कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो, उनसे तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय ने कहा बहुत अच्छा। जन्मेजय विषमपाई जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उत्तंक ने कहा बहुत अच्छा, गुरु पत्नी को प्रणाम किया, आज्ञा स्वीकार की और उनका प्रिय करने की इच्छा से सौदास की रानी के कानों के कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए। जाते जाते मनुष्य को खा खा करके पेट भरने वाला राजा सौदास के पास पहुंच गए। इधर उत्तंक मुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देता है? अहिल्या बोली, वो मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सौदास ब्राह्मणों के शाप से मनुष्य भक्षी राक्षस हो गया, इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहिल्या बोली, अब क्या हो, मैं तो इस बात को जानती नहीं थी, इसलिए मैंने ये काम सौंप दिया। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पत्नी के कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छी बात है, तुम चाहते हो वैसा ही हो। उधर उत्तंक मुनि ने एकदम निर्जन जंगल के अंदर राजा सौदास को देखा, बड़ी भयानक राक्षस किसी आकृति, लंबी लंबी दाढ़ी, मूछें, सारा शरीर मनुष्य के खून से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उत्तंक मुनि को देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गए और जोर से गर्जना करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आज तो मेरा भाग्य खुल गया, आज तो दिन के छठे भाग में तुम स्वयं ही चलकर मेरे पास आ गए, मैं तो स्वयं ही कोई न कोई आहार की खोज में निकला हुआ था। उत्तंक मुनि ने कहा, हे सौदास महाराज, मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं, जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा ज्ञानी महापुरुषों का वचन है। इधर राजा ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने दिन के छठे भाग में आहार लेने का नियम ले रखा है और वही समय में है, मैं भूख से पीड़ित हूं, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, मैं तुमको खाऊंगा। उत्तंक ने कहा, चलो यही बात सही, पर मेरी एक शर्त है, मैं गुरु दक्षिणा देकर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वो आपके अधीन है, अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूं। आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते थे, इस पृथ्वी पर आप श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हुए हुए हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए। मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूं उसका मिलना आपके ही हाथ में है, अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, वो वस्तु लेकर गुरु जी को देकर फिर अपनी बनाई हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। ये मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, कारण कि मैं अपने गुरु के पास बचपन से रहा हूं, कभी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूं, फिर अब तो झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं है। सौदास ने कहा कि यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे ही अधीन है तो वो मिली हुई समझो, अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने योग्य समझते हो तो मांगो, मैं अभी आपको दे सकता हूं, बोलो क्या चाहते हो। उत्तंक ने कहा, आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करने योग्य मानता हूं, इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडलों को मांगने आया हूं। सौदास ने कहा, ए ब्राह्मण, ये मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य है, आप और कोई वस्तु मांगिए, ये तो मैं उसको दे चुका हूं, दूसरी वस्तु मांगो दे दूंगा। उत्तंक ने कहा, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना मत कीजिए, दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए। उत्तंक के कहने पर राजा ने कहा कि जाओ ब्राह्मण, रानी के पास जाओ, उनसे मेरी आज्ञा सुना देना, वे कुंडल मांग लो, वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निस्संदेह दोनों कुंडल दे देगी। उत्तंक ने कहा, महाराज मैं कहां आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा, मेरा ये कायदा भी नहीं है, आप जंगल में रहे और आपके बिना मैं जाकर आपकी पत्नी से कोई बात करूं और वो भी कुंडल लेने की बात करूं, शिष्टता भी नहीं है, मेरे स्वभाव में भी नहीं है, और मुझे उनका दर्शन भी कहां होगा। बढ़िया बात तो है, आप स्वयं ही उनके पास चलो, स्वयं ही आज्ञा दो और स्वयं ही कुंडल लेकर मुझे देव। सौदास ने कहा, ब्राह्मण वे आपको कहीं महल में नहीं मिलेंगी, वो इसी जंगल में किसी झरने के किनारे मिलेंगी, और अभी मेरे दिन का छठा भाग है, मैं तो आहार की खोज में लगा हूं, इस समय तो मैं उनसे नहीं मिल सकता। यदि कदाचित वो मुझे मिल जाए तो शायद मैं उनको भी खा सकता हूं, इसलिए इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि राजा की रानी मदयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन सुनाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, ब्राह्मण देवता हमारे पति महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है सो ठीक है, आप असत्य नहीं कहते हैं, तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह तो लाना चाहिए था कि मैं उनके पास जाकर आया हूं। मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल बड़े दिव्य हैं, देवता लोग, यक्ष लोग, महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इनको चुरा ले जाने की इच्छा से कई प्रकार का छिद्र ढूंढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दूं तो सर्प हड़प लेंगे, यदि मैं अपवित्र अवस्था में इसको धारण करे रखूं तो यक्ष उड़ा ले जाएंगे, और यदि इन्हें पहनकर कभी कोई नींद ले लूं तो देवता लोग इसको जबरदस्ती ले जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से इनको रखती हूं, कहीं ये हमारे कुंडल खो न जाए। देवताओं से, राक्षसों से और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य इनको धारण कर सकता है, क्योंकि इनसे रात दिन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और तारों के भांति इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयानक जंतुओं से कभी भय नहीं लगता है, कभी भूख प्यास नहीं लगती है। छोटे कद का आदमी इन कुंडलों को पहन ले तो ये छोटे हो जाते हैं, और बड़ा डील डोल वाला मनुष्य इनको पहने तो उसके शरीर के अनुसार बड़े भी हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। कुंडलों की तीनों लोक में बड़ी प्रसिद्धि है। यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाओ। वैशंपायन जी कहने लगे, जन्मे जय राजा मदयंती की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने सौदास के पास जाकर उनसे पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ राजा सौदास ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए ये संदेश दिया। सौदास कहने लगा, प्रिये, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूं यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है, तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई गति भी नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास बोले, महाराज आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है? आप पहले राजा थे फिर राक्षस क्यों बने, ये सुनना चाहता हूं। सौदास ने कहा कि ब्राह्मण सुनो, क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, फिर भी कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम करता था, किंतु एक ब्राह्मण के साप से मुझे ये दोष तीव्र दुर्गति को प्राप्त हो गई। मैं मदयंती के साथ यहां रहता हूं, मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखता है। अब इस लोक में रहकर सुख पाने और परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति भी नहीं है। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके न तो इस लोक में चैन से रह सकता है न परलोक में ही सुख पा सकता है। यही मेरे गूढ़ संदेश का तात्पर्य है। अच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार आपको तो ये मणिमय कुंडल मिल गए, ये मैंने आपको दे दिया। अब आपने जो प्रतिज्ञा की उसका पालन करो। उत्तंक ने कहा, राजन मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, फिर आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूं। सवदास ने कहा, फिर कौन सा प्रश्न बाकी रह गया बताओ, उसका भी उत्तर दूं। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा, इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तंक मुनि ने कहा कि महाराज, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो, सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है वो चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुषों के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सवदास ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हो तो मेरा कहना यही है कि आप किसी प्रकार मेरे पास न आवे। इसी में ही आपका कल्याण है। यदि आएंगे तो फिर निस्संदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इस प्रकार बुद्धिमान राजा सवदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा लेकर उत्तंक मुनि अहिल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय कार्य करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करा दिए। वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मदयंती के अनुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा भी करनी थी, इसलिए वे उनको काले मृग छाले में बांध कर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने मृग छाला को एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिरने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर लगी हुई थी। वे कहां गिरते हैं इस इधर ध्यान ही नहीं दिया, इतने तोड़े हुए हैं ये भी ध्यान नहीं था। उनके तोड़े हुए प्राय सभी बेल वृक्षशाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बांधे हुए थे, वहीं गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह वृक्षशाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे आ जा गिरी। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। उनके तोड़े हुए प्राय सभी बेल वृक्षशाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह वृक्षशाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक हाथी पहले से ही मौजूद था। मृगशाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर अपने मुंह में दबा लिया और एक बल्मीक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख उत्तंक मुनि उद्विग्न हो गए, अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे वाल्मीकि के अंदर को बिल खोदने लगे। अब उनके मन में तनिक घबराहट अब भी उनके मन में तनिक घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल को खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी भी नहीं सह सकी। वह उनके दंड की चोट से घायल एवं व्याकुल होकर डगमगाने लगी। महर्षि उत्तंक ने नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय कर लिया। यह देखकर के महातेजस्वी इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए उसी स्थान पर आए और उत्तंक मुनि से कहने लगे। इंद्र उत्तंक को बहुत उत्तंक के दुख से दुखी थे, अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर वे बोले, ब्राह्मण ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, नागलोक में यहां से हजारों योजन दूर है, इस काठ के डंडे से वहां का रास्ता नहीं तय हो सकता, मेरी समझ में ये काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उत्तंक ने कहा, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने इन प्राणों को भी त्याग देता हूं, मैं प्राणों को रखने में भी असंभव हूं। ब्रजधारी इंद्र जब इस प्रकार उत्तंक को अपने निश्चय से हटा नहीं सके तो उनके डंडे के अग्रभाग में अपने वज्रास्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नाग लोगों का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वे लोक हजारों विस्तृत है, इसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्राकार है, प्राकार माने प्रकोटा। वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां, निर्मल जल वाली अनेक नदियां और विहंग वृंद से शोभायमान बहुतेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा है, 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की यह विशालता देखकर उन्हें उत्तंक मुनि ने हतोत्साहित किया। नागलोक की विशालता देखकर उत्तंक मुनि दीन हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा नहीं रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसके पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तंक से कहा, बेटा मेरे शरीर में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुराकर ले गया और मेरे पेट में रख दिया, वो मेरे पेट में फूंक लगाओ, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार मेरा भी भला किया है, उत्तंक ने कहा कि गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए मैंने तो कभी आपके दर्शन नहीं किए अश्वराज, और आपके कथनानुसार वहां पहले रहते जो काम अनेकों बार कर चुका हूं वो क्या है ये भी मैं सुनना चाहता हूं। घोड़े ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूं, मेरा नाम जात वेदा है, जात वेदा माने अग्नि, तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, अब तुम मेरे बताए अनुसार काम करो, विलंब मत करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा जो नागलोक को भयभीत कर रहा था। वह धुआं इतना बढ़ गया कि वहां कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गया, अंधेरा हो गया। ऐसे जान पड़ते मानो कुहासा से ढके हुए पर्वत और जंगल हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गईं और वे अग्नि के तेज से जलने लगे। अतः महामुनि उत्तंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गईं तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके लोगों ने उन्हें बड़ा सम्मानित किया और दिव्य कुंडल भी दे दिए। उत्तंक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु आश्रम की ओर चल दिए। गुरु पत्नी ने उस कुंडल मांगे, गुरु पत्नी को कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहां जो घटना घटी थी वो सब समाचार अपने गुरु को बता दिए। जन्मेजय इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए। वे ऐसे ही प्रतिभाशाली महान तपस्वी थे। जन्मेजय ने कहा, उत्तंक को वरदान देकर भगवान कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, उत्तम को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ अपने पुरी की ओर चल दिए और मार्ग में अनेक सरोवर नदियां वन जंगल पर्वत आए उनको लांघते गए और द्वारिकापुरी पहुंच गए। उस समय वहां रेवत पर्वत पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। सात्यकी को साथ लिए भगवान भी उस महोत्सव के अंदर पधारे थे। उस समय रेवत पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव था। सात्यकी और भगवान कृष्ण उस उत्सव में शामिल हुए। उस समय रेवत पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था रैवत पर्वत। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां की गुफाएं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश जगमग हो रहा था। वहां दीनों अंधों तथा अनाथों की तरह दान दिया जाता था। दीनों को गरीबों को जैसे दान देते हैं वैसे दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का परम कल्याण में उत्सव बड़ा भारी उत्सव था। उस पर्वत पर पुण्यानुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे जिनमें पुण्यात्मा ही रह सकते थे। उन पुण्य गृहों के कारण रैवतक पर्वत की देवलोक के समान शोभा थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से वह इंद्र भवन को भी मात करने लग गया था। वहां सबने मिलकर भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी को अपने भवन में ले गए। भगवान बहुत दिनों तक प्रदेश में रहने के बाद घर लौटे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय इनके पास भोज वृष्णि अंधकवंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका स्वागत सत्कार किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया, मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह दी। वसुदेव जी ने कहा, बेटा मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुख से सुनता आ रहा हूं कि महाभारत का युद्ध बड़ा अद्भुत था। परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों से देख के आए हो और उसके स्वरूप से भी भांति भांति परिचित हो, भली भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ रूप बताओ। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ तथा दूसरे दूसरे देश के रहने वाले जो अस्त्र विद्या पे निपुण थे, बड़े ऊंचे क्षत्रिय थे, उन्होंने किस तरह से दृढ़तापूर्वक युद्ध किया। पिता के द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने माता के सामने कौरव मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाई। कृष्ण ने कहा, पिताजी महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत थे। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्ष तक मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, इसलिए थोड़े में ये सब बात समझा देता हूं। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति के अधिनायक। उसी प्रकार भीष्म जी कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। भीष्म पिता के हाथ में 11 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक थे। पांडव पक्ष के 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सभ्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिन तक बड़ा भारी रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। अंत में भीष्म घायल हो गए, बाण सैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन था तब तक वे जीवित थे, उत्तरायण आने पर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। भीष्म जी के घायल होने के बाद कौरव पांडवों के सबके गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेरे खड़ी थी। 2 अक्षौहिणी सेना का घाटा लग गया कौरवों को। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक और भीमसेन उनकी रक्षा के लिए तैयार। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण कर उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का दारुण युद्ध 5 दिन तक चला। अंत में द्रोणाचार्य जी थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के माने जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वह मरने से बची हुई 5 अक्षौहिणी सेना से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौहिणी सेना थी जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा। दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह वह जबरदस्ती अर्जुन से भिड़ गया। फिर क्या था, उसकी मौत तो आनी थी। कर्ण के मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया, उन्होंने अपनी शक्ति खो दी और 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए मदनराज शल्य को सेनापति बनाना पड़ा। पांडवों की भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए, उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था। तो भी वो बची कुची सेना थी। 1 अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना किया गया। कुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते मद्रराज शल्य को भी मार दिया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक के घर पहुंचा दिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गए। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ गए, इसलिए अब वो अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से बाहर निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा करने लगा। उन्होंने द्वैपायन नामक तालाब में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगाया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। और फिर 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास पहुंचे। उस समय भीमसेन ने अपने बाघ बाणों से उसको खूब पीड़ित किया, उसको कटु वचन से व्यथित कर दिया। वह पानी से बाहर आया और हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार डाला दुर्योधन को। तब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण और सबके सोते में ही मार डालने के लिए उसने धृष्टद्युम्न आदि सबको मार दिया। इस घमासान में पांडवों के पुत्र सैनिक और मित्र सब काल की घास बन गए। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव ही बचे हुए थे। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये 3 जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृष्टद्युम्न, युयुत्सु की भी जान बच गई। बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आए। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिन तक जारी रहा। उसमें जो राजा मारे गए उन सबको स्वर्ग के अंदर निवास मिला। द्वैपायन जी कहते हैं, महाराज रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कथा को सुनकर वृष्णिवंशी दुख शोक से व्याकुल हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मे जय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगल जानकर दुखी हो जाएंगे, उनका अनिष्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु वध की बात नहीं कही। अभिमन्यु तो उनका दोहिता ही था, नहीं कही। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार मेरे भैया नहीं बता रहे, तो वो याद दिलाते हुए कहने लगे, भैया सबकी मौत बताती है, बताते हो, मेरे अभिमन्यु के वध की बात तो बताओ। इतना कहते कहते मूर्छित होकर गिर गई। अपने नाती अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर वसुदेव जी दुख और शोक में डूब गए। कृष्ण से कहा, बेटा, वसुदेव जी ने कहा, बेटा तुम मेरे दोहित्र के मरने का हाल क्यों बताए? उसकी आंखें तुम्हारे ही जैसी सुंदर थी, तुम्हारे रहते हुए शत्रुओं के हाथ में कैसे चला गया? हम तो यही जानते हैं कि पूरा समय होने तक मनुष्य के लिए मरना भी बड़ा कठिन होता है। देखो, ये भयंकर दुख देने वाला समाचार सुनकर मैं तुम्हारा पिता वसुदेव जीने की आस करता हूं। मेरा दोहित्र मर गया, लेकिन मैं जीने की आस करता हूं। अच्छा बताओ, कृष्ण मरते समय उसका मुख भय से व्याकुल तो नहीं था? कृष्ण वो महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा करता था। नाना जी, आपके सामने ये बाण छोड़ता हूं और वो जो आपको पतली सी जगह दिखती वहां पर ही मेरा बाण टिकेगा, ऐसे मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखने वाला था तो एक अभिमन्यु था। ऐसा तो नहीं है कि उस एक वीर को द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य ने सबने मिलकर मार दिया हो? जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया है, कभी भी अपना मुंह खराब नहीं किया, दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई, लाखों राजाओं के समूह को मौत की घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने के लिए तैयार था। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया तब दुशासन के पुत्र ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इंद्र भी उसको नहीं मार सकते थे, किंतु वहां तो बात ही कुछ और हो गई। अर्जुन संतप्तकों के साथ युद्ध करने के लिए दूसरे मोर्चे पर थे और इधर द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया, फिर भी वह शत्रुओं को बड़ा भारी संताप करने लगा। शत्रुओं का खूब संहार किया और दुशासन कुमार के हाथों से मर गया। महामते, अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप उसके लिए शोक मत कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक के अधीन नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण कर्ण आदि वीरों का युद्ध में मुकाबला किया है वो शोक के लायक कैसे हो सकता है? इसलिए आप शोक का त्याग कीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीर अभिमन्यु शस्त्राघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर ये मेरी बहन सुभद्रा बहुत दुखी और व्याकुल रहती है, कुर्री के भांति विलाप करती है। कुंती ने धीरे धीरे उसको समझाते हुए कहा भी है, सुभद्रे, श्री कृष्ण सात्यकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से युद्ध में चला गया। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है, इसलिए शोक मत करो। यदुनंदिनी, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में पैदा हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्रवधु उत्तरा गर्भवती है, उसकी ओर देखकर चिंतन करो। ये तुम्हारे कुल का बीज होगा। इस प्रकार से उसको समझाया बुझाया। कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी की। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव की आज्ञा लेकर नाना प्रकार के दान करवाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौ दान दी और अंत में विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक मत करो। अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गई। उस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूं। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप भी किसी प्रकार शोक मत कीजिए। अपने पुत्र कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। भगवान कृष्ण ने अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूरी की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्होंने उनको वस्त्र आदि से संतुष्ट किया। उस समय ब्राह्मणों के हर्ष से रोमांच हो गया। वे स्वर्ण गौ सैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। कृष्ण के साथ ही बलभद्र सात्यकी और सात्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। तदनंतर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि वेदव्यास आए और उन्होंने कुंती उत्तरा आदि से मिलकर कहा, बेटा उत्तरा, ये शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देख करके कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पोता होने वाला है, ये बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी का वह धर्म के अनुसार पालन करेगा, इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की अब आवश्यकता नहीं है, मेरा ये कथन सत्य होगा। वृष्णिवंश के वीर भगवान कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा वो भी तो वैसा का वैसा ही हुआ है। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। उन्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति वृद्धि पाने लगे। तदनंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने हिमालय से धन लाने का विचार किया। महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के राजा मरुत ने जो हिमालय के अंदर यज्ञ किया था और उनकी बहुत बड़ी धनराशि पृथ्वी पर पड़ी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया। वैशंपायन जी ने कहा कि देखो, महर्षि व्यास जी के बात सुनकर युधिष्ठिर ने धर्म भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव अपने भाइयों को बुलाकर कहा कि देखो भाइयों, व्यास जी अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई थी वो तुमको सबको पता है। अब मैं उनके कहने अनुसार एक कार्य करना प्रारंभ करता हूं। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा है, अतः उनकी बात परिणाम में कल्याण करने वाली है। इस समय सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है। आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमको हिमालय पर मरुत नाम के राजा का धन बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझते हो और उसे ले आने की तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो व्यास जी की आज्ञा पाकर धर्मतः उस प्राप्त द्रव्य का उपयोग यहां धर्म में लगाओ। अथवा भीमसेन, तुम्हारी क्या इच्छा है? भीमसेन ने कहा, महाबाहु, व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा वो मुझे पसंद है। यदि हमें मरुत का धन मिल जाएगा तो वो सब प्रजा के ही तो काम आएगा। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को लाने के लिए जाएंगे। देवादिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन वाणी क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उन्हें निश्चय उस धन की प्राप्ति हो जाएगी। भीम की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन नकुल सहदेव ने भी समर्थन किया, सभी पांडव रत्न लाने के लिए शुभ दिन ध्रुव सिंहक नक्षत्र में सेना को तैयार करके चलने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, वे स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने को तैयार हो गए। उस समय सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनकी यात्रा के समय नगरवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ करवाया और पांडवों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, परिक्रमा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर को राजधानी में रखने के लिए आदेश दिया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दे रहे थे। यथोचित रूप से सबका अभिवादन स्वीकार किया। राजा के पीछे सैनिक चल रहे थे, उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज गया। युधिष्ठिर उस पर्वत पर जा पहुंचे जहां पर मरुत का रखा हुआ अपार द्रव्य संचय था। बड़ा सुंदर स्थान, वेदांग के पारगामी विद्वान धौम्य मुनि उनको आगे किया। सैनिकों ने वहां पर पड़ाव डाल दिया। फिर ब्राह्मणों ने क्षत्रिय पाठ, ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों के बीच में रखकर चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौंकाने वाली छावनियां बनाई तथा उन्हें मतवाले गजवाराज के रहने के लिए भी स्थान का प्रबंध किया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः हमें इस कार्य को सिद्ध कर लेना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पी कर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर पांडवों ने रात में उपवास किया, कुश के आसन पर निवास किया और ब्राह्मणों की खूब बातें सुनी और रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल हुआ, ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, शंकर की पूजा कीजिए, नैवेद्य अर्पण करके अपने कार्य के लिए उद्योग कीजिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर के राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित किया, फिर शिव के पार्षदों को तिल मिश्रित जल और भात गढ़ों में भटकर भेंट दिए। ब्राह्मणों को हजारों गौवें दी। राजा उस स्थान को गए जहां पर अपार सोने की राशि संचित पड़ी हुई थी। भांति भांति के फूल, मालपुआ और खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा की, उन्हें प्रणाम किया। देखो, अलग अलग देवताओं का अलग अलग भोग होता है। कुबेर का भोग होता है वो मालपुए का होता है। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया। थोड़ी देर में सोने के बने हुए अनेक प्रकार के सुंदर कठोते, सुराई, गडुआ, कटा, कलश, कटोरे, क्या क्या बताए, हजारों ढंग के सामान निकले। उनके रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें थी। एक एक संदूक में बंद किए गए बर्तनों का थोड़ा बोझ कम से कम आधा भार होता था। एक एक बर्तन में भार माने 8 मण का एक भार होता है, तो 4-4 मण एक एक संदूक के अंदर सोना। उनको ढोने के लिए बहुत सी सवारियां थी, 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े और उतनी हथनियां, गधों और मनुष्यों की गिनती ही नहीं। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000, प्रत्येक हाथी पर 24,000 सुवर्ण का भार लादा था। इसी प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथासंभव भार डाल दिया। इन सब वाहनों पर धन लदवा कर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया। व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके फिर हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण दो दो कोस पर मुकाम करते थे और द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई विशाल सेना को हर्षित करते हुए नगर की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णिवंशियों के साथ द्वारिकापुरी से चलकर हस्तिनापुर आ गए। अब आगे कल यज्ञ की तैयारी होगी।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।